मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं और थोड़ी एक दो सूचनाओं को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ज्योग्राफी की तैयारी के लिए एकेडमी का एक प्रोग्राम डाला गया है, मेरा लेक्चर डाला गया है। उसमें मैंने ये बताया है कि अभी जो सिविल सर्विस के जो प्री एग्ज़ाम होंगे उसमें ज्योग्राफी विषय की तैयारी आप सब कैसे करेंगे। हो सकता है इस बात की जानकारी आपको पहले से ही हो, लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूं और मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपको आपके आधा घंटा वक्त लगेगा, ज़रूर उसे ध्यान से सुन लेना चाहिए और देखिए कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और यदि उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे छूट गए हों तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको उन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दे देना चाहिए। अखबारों में आपने पढ़ा ही कि जो हमारी मीरा चानू है भारोत्तोलन में, उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल जीता है और इस तरीके से भारत की एक अच्छी शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं और क्या क्या हमें टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानने को मिलता है। मैं लगातार जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको बताता रहूंगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मीरा चानू हैं ये इम्फाल की रहने वाली, मणिपुर आप कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि मणिपुर की रहने वाली हैं। आज के अखबारों में किसी किसी अखबार ने ये लिया है इन्फा तूफान। ये चीन में आया बहुत ही जबरदस्त तूफान है और इतना जबरदस्त तूफान है कि ये कहा जा रहा है कि यह तूफान 5000 सालों में भी जो तूफान आए हैं उनसे भी ज्यादा भयावह, इतनी बारिश हो रही है। और फ्रेंड्स, इस दौर में आप देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे दौर में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो मौसम है उनमें आपको एक विचित्र किस्म का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कहीं गर्मी पड़ रही है तो पता लग रहा है कि वो सैकड़ों हजारों साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तूफान आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, तो ये सब दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा हमारा जो वेदर का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब क्यों है इसके बारे में जो मौसम विज्ञानी हैं या कह लीजिए जो जलवायु विशेषज्ञ हैं, प्रकृति विज्ञानी हैं, वो सीधे सीधे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ठहराते हैं। और सही भी है क्योंकि कोई ना कोई रीजन तो होगा ही है। फिलहाल आपको इन्फा तूफान याद रखना है जो चीन में आया है, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। दोस्तों, एक खबर एडिटोरियल के रूप में है, इसे मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। इससे क्या है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि वो आपकी जो जानकारियां हैं उन्हें बहुत स्ट्रांग कर देते हैं और इससे प्री एग्जामिनेशन में अनुमान लगाने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है और मेंस के लिए आपको तथ्य भी मिल जाते हैं। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ना, ये भारत सरकार का संस्थान है। NTPC ने अभी फैसला किया है कि वो गुजरात के रन ऑफ कक्ष में ग्रीन हाइड्रो या रिन्यूएबल एनर्जी कह लीजिए, अभी हम उसी शब्द का इस्तेमाल करें, कि उसका बहुत बड़ा एक पार्क लगाने जा रही है, बहुत ही बड़ा सोलर पार्क लगाने जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क लगाने जा रही है और उसकी जो क्षमता है वो है 4750 मेगावाट, 4750 मेगावाट। क्योंकि एनर्जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तब तो वह और भी अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए। और NTPC ने एनर्जी के प्रोडक्शन में भी जो अपने फोकस में रखा है वह है उनका बकायदे ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की कोशिश होगी। आज एक एडिटोरियल में मुझे यह भी पढ़ने को मिला है, एक शब्द है फिट फॉर 55। आपने देखा होगा कि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के पूछ लिए जाते हैं और मैंने देखा है, पाया है कि जो पूछे जाते हैं वो बहुत वेल नोन नहीं होते, लेकिन देखिए कभी न कभी किसी न किसी अखबार में या न्यूज़ में वो आ चुके होते हैं लेकिन हमारी पकड़ से छूट जाते हैं। अब चलिए, हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते फ्रेंड्स, यही है कि मेरे जैसे या और कोई अखबार या और जो दूसरे लोग हैं आपके ध्यान में ले आए या खुद आपकी पकड़ में आ जाए, दिमाग में कहीं वो चीज़ अटक गई और हो सकता है कि एग्जामिनेशन में वो काम आ जाए, इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फिट फॉर 55 ये क्या है? जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन के देश, उन्होंने एक फैसला किया है, फैसला ये किया है, घोषणा की है आप कह लीजिए, कि वे अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज जिससे कि पूरा के पूरे पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा है, कितना कम करेंगे। उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया है 1990, तो 1990 की तुलना में 2030 तक, ये भी याद रखिए 2030 तक वो 55% कम कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है फिट फॉर 55% वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करेंगे यूरोपियन यूनियन के देश, और ये जो 55% है इसका बेंचमार्क है 1990 और जो टारगेट ईयर है वो है 2030। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। यहां मैं एक दो तथ्य आपको और देना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जितना भी विश्व में इस तरह का उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें जो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि भारत कितना उत्सर्जित करता है वो 4-5% के आसपास है। बहुत एग्जैक्ट डेटा पता नहीं, जब आप अलग अलग अखबारों में पढ़ेंगे तो अलग अलग डेटा पढ़ने को मिलते हैं, तो लगभग कह लीजिए कि आप 4% के आसपास है। और आप जानते हैं कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति भी बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और उसने घोषणा की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और जो रेलवे हैं उन सबको हम ग्रीन हाइड्रोजन पर ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो इससे फिर जो कार्बन का उत्सर्जन है वह अपने आप कम होता चला जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर और वह है विश्व विरासत साइट। यह विषय मैंने क्यों चुना, बहुत कम अखबारों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, मुझे सिर्फ एक ही अखबार में ये पढ़ने को मिला है और वो है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल को कल जो यूनेस्को है उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए उत्तर भारत में हम हैं तो उत्तर भारत के अखबारों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, लेकिन दक्षिण भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टेम्पल है रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना में है, तेलंगाना का जो पालमपेट जगह है वहाँ ये टेम्पल बना हुआ है, तो डेफिनेटली साउथ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो बाकायदे हिंदू में इसका उल्लेख और फ्रंट पेज स्टोरी है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट करने का जो दायित्व है वो यूनेस्को के पास है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिएगा। इसका जो ऑफिस है वो पेरिस में है और बकायदे 1975 से ये काम कर रहा है, और जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से यूनेस्को बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसके डिटेल्स जानने ही चाहिए। दोस्तों ये जो हमारा टेम्पल है ये 13th century का है, 13वीं शताब्दी का ये टेम्पल है, और खासकर जो साउथ के स्टूडेंट हैं अगर वे अभी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होंगे तो मैं स्पेशली उनसे कहूँगा कि इसे थोड़ा सा विस्तार से वो देख लें। अब ये जो विश्व विरासत में जिन्हें शामिल किया जाता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्या है साइट होने चाहिए, जैसे वन, झील, भवन, द्वीप, पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, शहर, जैसे हमारा अहमदाबाद शहर, तो ये बकायदे इसमें शामिल किए जाते हैं, और ख़ासकर जो कल्चरल इम्पोर्टेंस के हों और साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के हों, या कह लीजिए कि नेचुरल इम्पोर्टेंस के हों, कल्चरल और नेचुरल आप कह लीजिए, जो प्राकृतिक महत्व के हों। बाकायदे इसके लिए कमेटी होती है, वो कमेटी उस पर डिसाइड करती है, विजिट करती है, देश जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर कमेटी आती है, देखती है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, फिर उस रिपोर्ट पर विचार होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है और तब कहीं जाकर के उस स्थान को वह विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है, और जब सूची में शामिल किया जाता है तो फिर उस स्थान को लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है कि इसका संरक्षण किया जाना है, और फिर इसके लिए बकायदे धन भी प्राप्त होता है और फिर उस सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उसकी रक्षा करे। दुनिया में लगभग देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं, है ना, अभी तक जो है आप यूं कह लीजिए कि लगभग 1120, कहीं आपको 21 भी पढ़ने को मिल जाएगा, मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लीज इसे नोट कर लें, मैं केवल आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, है ना, आंकड़े पूछे नहीं जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाती है डेटा के आधार पर। लगभग 1120 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कल्चरल हेरिटेज साइट काफी हैं, लगभग 870 आप कह लीजिए, और जो नेचुरल हैं वो लगभग 212, 10, 12, 13 इसके आसपास है सामान्यतया। भारत में फिर से मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि 38 अभी तक के जो डेटा हमें मिल रहे हैं, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुझे नहीं मालूम कि इस 38 में अभी जो रामप्पा टेम्पल है वो शामिल है या नहीं है, तो थोड़ा सा मैं अपना प्रोटेक्शन लेकर के चल रहा हूं, लेकिन इससे आपको कम से कम पता लग जाता है कि भाई पूरी दुनिया में 1100 हैं और 1100 में भारत में 40 के आसपास है, बस इस तरह का की धारणा आपको लेकर के चलनी चाहिए, ताकि आप कभी निबंध लिख रहे हों या संस्कृति का कोई प्रश्न हल कर रहे हों तो वहां आप थोड़ा सा बस मेंशन कर सके, एग्जैक्ट डेटा की वहां देने की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर आपको एक झलक मिल जाएगी विश्व विरासत सूची में भारत के कौन कौन से स्थान शामिल हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, आगरा का किला है, ताजमहल तो है ही, फतेहपुर सीकरी है, सुंदरबन है, देखिए अलग अलग क्षेत्र में ले रहा ना, सुंदरबन है, महाबलीपुरम के जो मंदिर है, हमारा सूर्य मंदिर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, गोवा के चर्च हैं, चोल के शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, सांची का स्तूप है, तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो इससे आपको एक झलक मिल गई होगी कि अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो किसे दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अनीशा वर्मा, अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से, दीक्षा मेघवाल राम कुमार, दीपक शोराण चरखी दादरी हरियाणा से, नेहा निधि रांची झारखंड से, सुमन कुमारी कैमूर बिहार से, आर्यन राज हाजीपुर बिहार से, शुभम यादव झांसी उत्तर प्रदेश से, आशुतोष आचार्य भोपाल से, और शिवानी पवार आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ, नमस्कार।